الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ونجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں معرف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور یہ جو آخری آیات ابھی تلاوت کی گئیں انہی کے ہم نے معرف مسائل پڑھنے ہیں. پچھلی کلاس میں تو پیچھے کا ہی بہت ساری ڈسکشن ہو گئی علم الغیب وغیرہ سے متعلق، اور آگے ہم بالکل بھی نہ بڑھ سکے، تو آج ہم معروف و مسائل کے تیسرے پیراگراف سے شروع کرتے ہیں، پیج نمبر 161 کے اوپر. تو حضرت مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے معروف و مسائل میں جو شروع کیا کہ پچھلی آیتوں میں انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے اور دعوت حق دینے کا ذکر اور انبیاء کے متعلق کچھ شبہات کا جواب دیا گیا تھا. آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس پر تنبیہ ہے کہ یہ لوگ انبیاء کی مخالفت کے انجام بد پر نظر نہیں کرتے. انبیاء کی مخالفت کے اوپر انجام بد آتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی مخالفت تو ہوتی نہیں، کیونکہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو زیادہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کی مخالفت کہہ کے نہیں کر رہا ہوتا، وہ نبی کی ہی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اور نبی کی مخالفت ہی اللہ کی مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا کیا حکم ہے وہ نبی ہی کو پتہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے عذاب جو ہے نا وہ نبی کی مخالفت کے اوپر آتا ہے. تو اگر یہ ذرا بھی غور کریں اور اپنے گرد و پیش کے شہروں اور مقامات کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بد اس دنیا میں بھی کس قدر سخت ہوا ہے. قوم لوط علیہ السلام کی بستی الٹ دی گئی، قوم عاد و ثمود کو طرح طرح کے عذابوں سے نیست و نابود کر دیا گیا، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے. دوسری آیت میں ہدایت کی گئی کہ دنیا کی تکلیف اور راحت تو بہرحال چند روزہ ہے، اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے جہاں کا قیام دائمی اور رنج یا راحت بھی دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور فرما دیا کہ آخرت کی درستی تقویٰ پر موقوف ہے، تقویٰ پر، خدا خوفی اور گناہوں سے بچنا یہ تقویٰ ہے، اور آخرت کی درستی اسی پر ڈپینڈ کرتی ہے، اسی پر جو ہے نا وہ یعنی معلق ہے، اسی کے اوپر، اسی پر موقوف ہے، یہیں پہ کھڑی ہوئی ہے، اس سے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بس آخرت تقویٰ کے اوپر ہے، جس کے معنی تمام احکام شرعیہ کی پابندی کرنا ہے. تقویٰ کے معنی احکام شرعیہ، ٹھیک ہے. تو شریعت کے حکم ہیں کیا یہ معلوم ہوگا، تبھی ان کے اوپر عمل ہو سکے گا. جب پتہ ہی نہیں تو پھر کیسے عمل کرے گا. اس آیت میں پچھلے رسولوں اور ان کی امتوں کے حالات سے موجودہ لوگوں کو متنبہ کرنا تھا، اس لیے اگلی آیت میں ان کے ایک شبہ کو دور کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو دنیا میں موجود ہیں ان کی ہدایت کے لیے ہے. تو اس وقت جب یہ نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کی ہدایت کے لیے، اور آج جو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے محفوظ فرمایا ہے، تو یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، ٹھیک ہے. جو لوگ دنیا سے گزر گئے، چاہے وہ دو دن پہلے گزر گئے یا 2 سال پہلے گزر گئے یا 2 صدیوں پہلے گزر گئے، ان کا معاملہ ختم ہو گیا، اب یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کے اوپر توجہ دینی ہے تاکہ ہم جو ہیں وہ دنیا سے کامیابی کے ساتھ گزریں، ناکام ہو کے نہ گزر جائیں. تو اس وجہ سے وی ہیو ٹو پے فل اٹینشن. تو اس لیے اگلی آیت میں ان کے ایک شبے کو دور کیا گیا، वो ये कि अक्सर लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजाब इलाही से डराने का जिक्र अरसे से सुन रहे थे और कोई अजाब आता नजर नहीं आता था। ठीक है, सुन तो रहे थे नबी अलैहिस्सलाम बशीरों व नजीरा, ठीक है ना, शाहिदों व मुबशिरों व नजीरा, ठीक है, यानी बशारत देने वाले भी, जो मान गए उनको बशारत देने वाले, लेकिन जो नहीं माने उनको डराने वाले, खौफ दिलाने वाले कि अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह के अजाब से तुम नहीं बच सकोगे। जब पहली वही नाजिल, जब पहला हुक्म नाजिल हुआ कि या अय्युहल मुद्दसिर, ए मुद्दसिर कुम व अबशिर, नहीं कुम फ अबशिर नहीं, या अबशिर व अंजिर, दोनों दोनों हुक्म आ रहे हो। पहला हुक्म जो है वो ये नहीं आया कि खुशखबरी भी सुनाओ जाकर के और डराओ भी जाकर के, नहीं, तुम खड़े हो जाओ यानी अपने काम से लग जाओ, व अनजर और डराओ, मुतलकन डराने का हुक्म है। क्यों? इसलिए कि उस वक्त जो है वो मानने वाला कोई भी नहीं था। एक अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रहता और खदीजा अनहा थी भी तो उनके ऊपर तो हुक्म नहीं लगाया जा सकता ना, वो तो पूरे के पूरे मुआशरे के अंदर, पूरी की पूरी दुनिया के अंदर दो लोग थे, ठीक है ना, जिन्होंने तस्लीम कर लिया था नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत को, या हो सकता है उस वक्त उन्होंने भी खदीजतुल कुबरा उन्होंने तो फौरन तस्लीम कर लिया था, ठीक है ना। तो जब पहले हुक्म दिया गया है तो डराने का हुक्म दिया गया, क्यों? इसलिए कि अभी ना मानने वाले लोग ही हैं सारे के सारे, और जो बहुत ही कलील मिकदार में होते हैं वो काउंट नहीं होते, वो काउंट काउंट में आते ही नहीं है वो लोग, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम डराने का काम पहले दिन से कर रहे थे, पहले हुक्म से कर रहे थे डराने का काम, लेकिन अजाब नजर नहीं आता था। तो इससे ना उनकी हिम्मतें बढ़ रही थीं कि कोई अजाब आता होता तो अब तक आ चुका होता, ठीक है। इसलिए फरमाया कि अल्लाह जल्ला शानहू अपनी रहमत और हिकमत बालिगा से बसा औकात मुजरिम कौमों को मोहलत देते रहते हैं, एकदम से अजाब नहीं आता, और ये कि हिकमत, एक तो रहमत हो गई जिसकी वजह से एकदम से अजाब नहीं आता, बहुत मोहलत देते हैं सोचने समझने, राइट, मोहलत देते हैं। और हिकमत क्या है कि भाई इससे जो है ना वो फिर बहुत सारे मुनाफे पोशीदा होते हैं इसके अंदर, ईमान वालों के नफे की बहुत सारी चीज होती है कि काफिर जो है वो एकदम से मान जाएंगे तो फिर ईमान वालों के लिए भी माशाल्लाह पहले दिन से ही दुनिया में जन्नत बन जाएगी, राइट, पहले दिन से ही जो है ना वो सारे लड्डू पेड़े सब कुछ जो है वो उनके हाथ में आ जाएगा, वो जो है दुनिया की हुक्मरानी भी मिल जाएगी उनको, तो फिर जो उनकी तरबियत होनी थी, उनका तस्किया होना था, उनका जो है वो दरजात मिलने थे, उनकी जो कुर्बानियां होनी थी, उनके जो सब्र का इम्तिहान होना था, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अगर पहले दिन ही अजाब आ जाए या पहले दिन ही जो है वो हिदायत मिल जाए सबको, ठीक है ना। तो ये हिकमत बालिगा, इसको कहेंगे हिकमत बालिगा, ठीक है। तो रहमत और हिकमत बालिगा से बसा औकात यानी अक्सर औकात मुजरिम कौमों को मोहलत देते रहते हैं, और ये मोहलत बाज औकात बड़ी तवील भी हो जाती है, तवील हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तवील हो जाती है, वरना अल्लाह ताला का स्टैंडर्ड क्या है कि फरमाया इक्तरबत साअतु वनशक्कल कमर, राइट, के कयामत करीब हो गई जब शक्कुल कमर का मुआवजा हो गया। तो शक्कुल कमर के मौजूद को हुए कितना अरसा हो चुका है, 1446 ईयर चल रहा है ना ये, राइट, तो 1446 साल गुजर चुके हैं शक्कुल कमर को, और कुरान मजीद में लफ्ज इस्तेमाल होता है करीब हो गई कयामत, अभी तक तो नहीं आई कयामत। तो अल्लाह ताला का स्टैंडर्ड जो है ना वो भाई परवरदिगार हैं, वो मालिक हैं, हर चीज के मालिक हैं और खालिक हैं, हमारा स्टैंडर्ड जो है वो दूर और नजदीक का जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बाज़ औक़ात बड़ी तवील भी हो जाती है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम, राइट, नूह अलैहिस्सलाम का तो रिकॉर्ड ब्रेक है ना, 950 ईयर्स, और कई जनरेशन गुजर गई, या अगर लीनियरली भी अगर देखा जाए तो 3 जनरेशन गुजर गई, क्योंकि उस जमाने में एवरेज उम्र जो है वो 3.5 साल होती थी, उन्होंने जो लिखा है 350 साल, 350 साल नहीं 350 साल, ठीक है। तो 3 जनरेशन अगर लीनियर की, एक जनरेशन पूरी की पूरी खत्म होगी, फिर दूसरी जनरेशन आएगी, फिर तीसरी जनरेशन आएगी, वरना तो भाई एक किसी खानदान के अंदर बूढ़े साहब जो हैं वो बूढ़े थे और नूह अलैहि सलाम ने उनको तबलीग देनी शुरू करी, उनका इंतकाल हो गया। अब उनके जो है वो बेटे को तबलीग मिल रही है, बेटे साहब भी जो है वो बड़ी उम्र के हैं तो उनका भी इंतकाल हो गया। तो इस तरह से तो मल्टीपल जनरेशन जो है वो गुजर गए नूह अलैहि सलाम, और अजाब ही नहीं आ रहा अल्लाह ताला का। 950 साल के बाद फिर अल्लाह ताला का अजाब आया है। तो बाज औकात बड़ी तवील भी हो जाती है मोहलत, जिसकी वजह से सरकशों की जुर्रत बढ़ जाती है और पैगंबरों को एक गुना मतलब थोड़ी बहुत, बहुत ही कम, लेकिन एक जहत में, एक अंदाज में पैगंबरों को भी परेशानी पेश आती है। ठीक है, तो अब ये तो हमने किस्से कहानी माशाल्लाह पुरानी वाली सुन ली कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब हमारे लिए क्या, हम इससे क्या हिदायत लेते हैं कि हम भी जब दीन की तरफ आ गए, या हम पहले से जो है वो खानदानी तौर पर दीनदार थे और हम जो है वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि लोग जो है वो बड़ी गुनाहगारी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी गफलत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, और हम जो है वो बड़ी दीनदारी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो है वो हमने तर्क करी हुई हैं, ख्वाहिशात को छोड़ा हुआ है, और फजूल किस्म के खेल कूद को और म्यूजिक को और सिनेमा को और डांसिंग को और ना जाने किस किस चीज को छोड़ा हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने उनको अपनाया हुआ है, जो लोग गुनाह की जिंदगी के अंदर, चाहे जाहिरी गुनाह हो, बातनी गुनाह हो, झूठ का गुनाह हो, गीबत का गुनाह हो, या बेहयाई का गुनाह हो, राइट, उसके अंदर लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई ना करो, अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी होती है, और अल्लाह का हुक्म जो है ना उसके ऊपर लाजिमन जो है वो इंसान को, राइट, मैं ये अमल सू युज्ज़ भी बार बार सुनाते हैं हजरत से, जब से सुना था आज से 25 साल पहले बयान परेशानियों का हल, राइट, तो उसमें जो ये आयत सुनी थी तो अभी तक सुनाते चले जा रहे हैं सबको, मैं ये अमल सू युज्ज़ भी, जो भी बुरा काम करेगा वो उसकी जजा पाएगा। लेकिन कितनों को आपने जजा पाते हुए देखा, कितने अपने खानदान वालों को जो कि म्यूजिक सुनते हैं, जो कि डांस करते हैं, जो कि बेहयाई करते हैं, जो कि बेपर्दगी करते हैं, अल्लाह के हुक्मों को सराहतन भी तोड़ते हैं और छुप करके भी तोड़ते हैं, कितने अजाब देखे आपने, राइट। हमारा तो ये है ना कि भाई कोई बेपर्दगी करेगा तो किताबों में लिखा हुआ है कि बेहयाई फैलेगी, बेहयाई फैलेगी तो औरतों की इज्जतें जो है वो लूटी जाएंगी और जो है वो रेप बढ़ जाएगा, रेप हो जाएगा और ये हो जाएगा वो जाएगा। कितने कितने लोगों, कितनी औरतों को देखा आपने, अखबारों की खबरें तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, राइट, तो अखबारों की खबरों की मिसाल तो जंगल में मोर नाचा आपके साथ खुद तो नहीं हुआ ना, आपके खानदान के किसी शख्स के साथ तो नहीं हुआ ना, इल्ला माशाल्लाह किसी के साथ कुछ हुआ हो, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, राइट, तो अजाब तो आके नहीं देता। ठीक है, उसी तरीके से सूद, सूद जो है ना, ये सूदी बिजनेस जो है वो फ्लॉप हो जाता है और जो है वो बर्बाद हो जाता है, और सूद के ये नुकसान हैं, और अल्लाह और रसूल की जंग हो जाती है, हैं, सूदी कारोबार जो है वो पूरी दुनिया सूदी कारोबार पे चल रही है, राइट, हर बैंक जो है वो सूद के ऊपर चल रहा है, और दिन रात, दिन दुनी रात चौगनी जो है वो तरक्की भी कर रहा होता है, एक से एक जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एडवांसमेंट्स हो रही हैं, और जो है वो टेक्नोलॉजी भी आ रही है, और कंट्रोल भी आ रहा है, और ताकत भी आ रही है, और ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, कोई अजाब नहीं आ रहा। ठीक है ना, वो इंडिविजुअली किसी को अजाब आता होगा तो भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी के बेडरूम में किसी के ऊपर अजाब आया तो किसको क्या पता कि अजाब आया उसके ऊपर। ठीक है ना, तो वही एक्सपीरियंस, वही एक्सपीरियंस ईमान वालों को आज के दौर के अंदर भी होता है। ठीक है ना, जो ईमान वाले, जो ईमान वाले, शर्त यहां पर ईमान वाली, ठीक है, तो वही एक्सपीरियंस जो अंबिया को होता था, वही एक्सपीरियंस अंबिया के जो है वो फॉलोअर्स को भी होता है, कि अजाब नहीं नजर आ रहा होता, अजाब नहीं आ रहा होता, अजाब जो है वो आप किसी को दिखा नहीं सकते कि देखो उसने ऐसा किया था, उसके ऊपर ये वाला अजाब आ गया। ठीक है, हमारा मामला तो अनफॉर्चुनेटली, हम तो जो है ना बस अल्लाह ही रहम करे हमारे ऊपर, हम तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, यानी जो दीनदार है ना, दीनदार परहेजगार, ठीक है, तो हम तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह ना तो हम जो है वो खुल करके जो है वो अल्लाह की नाफरमानी करने वालों में से हैं, यानी बहुत ही बगावत के तरीके से कि जो कि अजाब के मुस्तहिक बनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उधर भी नहीं है, लेकिन हम तो ईमान वालों की तरफ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे तो हालात अजीबो गरीब हैं कि हम जो है वो गुनाह भी साथ साथ कर रहे होते हैं, नेकियां भी साथ साथ कर रहे होते हैं, और अजीबो गरीब किस्म का हमारा नफ्स जो है वो लवामा है कि पता नहीं हमारा है कि समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इस वजह से ना ईमान वालों के साथ ऐसा होता है कि अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को मोहलत देते हैं, लेकिन अजाब उनको आकर के पकड़ता है। हमारा मामला तो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का है कि हमारा तो एहतमाल ये है कि हम खुद भी अजाब का शिकार ना हो जाए, या हो रहे हैं बल्कि। ठीक है, तो इरशाद फरमाया कि हत्ता इज़ा इस्तयअस अर-रुसुल वज़न्नू अन्नहुम कद कुज़िबू जाअहुम नसरुन वनुज्जिया मन नशा वला युरद्दु बासुना अनिल क़ौम अल-मुजरिमीन। कि यानी पिछली उम्मतों के नाफरमानों को बड़ी बड़ी मोहलतें दी गई, ये तफसीरी अल्फाज हैं, और अंडरलाइन के अंदर तर्जुमा है कि यहां तक के, हत्ता यहां तक के मुद्दते दराज तक उन पर अजाब ना आने से पैगंबर, अर रसुल पैगंबर, ये ख्याल करके मायूस हो गए। इदा स्तई असु, वो मायूस हो गए इस्तई असु कि अल्लाह ताला के इजमाली वादे अजाब का जो वक्त हमने अपने अंदाज से अपने जहनों में मुकर्रर कर रखा था, इसमें कुफार कर रखा था कि इस वक्त में कुफार पर अजाब, इस वक्त में कुफार पर अजाब ना आएगा और हक का गलबा जाहिर ना होगा। यानी इबारत में थोड़ा सा इश्काल है कि अल्लाह ताला के इजमाली वादे अजाब का जो वक्त हमने अपने अंदाज से अपने जहनों में मुकर्रर कर रखा था, इस वक्त में कुफार पर अजाब नहीं आएगा और हक का गलबा जाहिर नहीं होगा। यानी उनको ये मायूसी हो गई कि नहीं होगा, हक का गलबा जाहिर नहीं होगा उस ड्यूरेशन में जो कि हमने सोच के रखी हुई, तो उसमें नहीं होगा, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। और उन पैगंबरों को गुमान गालिब हो गया, कद कुजिबू सॉरी जन्नू, उनको गुमान गालिब हो गया कि वादे इलाहिया का अपने अंदाजे से वक्त मुकर्रर करने में हमारी फहम ने गलती की, हमारी फहम ने गलती करी। यानी गलती हमारी अंडरस्टैंडिंग में, हमारी कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने तो कोई मुअय्यन वक्त बतलाया नहीं था, हमने मखसूस कराइन से एक मुद्दत मुतय्यन कर ली थी, हमने मखसूस कराइन से, मखसूस कराइन क्या होते हैं, जो कि इर्द गिर्द के मामलात चल रहे होते हैं, इन इर्द गिर्द के हालात चल रहे होते हैं, तो उनको जो है ना वो कराइन कहा जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स का लफ्ज जो है वो अंग्रेजी में हम इसे समझाते हैं। ठीक है, तो एक इंसान जो तखमीना लगाता है ना, जो कुछ कैलकुलेशन करता है, कुछ जो है वो हत्ता के अजम्पशन भी करता है, तो वो अजम्पशन करने के लिए ना उसको फिर सिर्फ जो है जो असल मवाद होता है, जो असल कोर मैटर होता है, उस कोर मैटर के साथ साथ उसको जो है ना वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसिडर करना होता है। ठीक है ना, सिर्फ आप किसी किसी चीज की जात की बुनियाद पर आप फैसले नहीं कर सकते, आप जजमेंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर साजिद ने बहुत पहले शायद ये वाली मिसाल से बात समझाई थी कि आप किसी औरत को देखें कि जो कि स्कार्फ पहनी हुई है, जिसको के दुनिया वाले हिजाब का नाम देते हैं, वो हिजाब नहीं होता, वो सिर्फ स्कार्फ होता है, हेड स्कार्फ, हेड कवरिंग होती है। ठीक है ना, तो वो हेड कवरिंग पहनी हुई है। ठीक है ना, तो अब आप उसके बारे में कुछ जहन में आपके एक तस्वुर आता है कि ये दो दो बातें आ सकती हैं। एक बात आ सकती है कि ये कैसी लड़की है, ये तो अपने चेहरे को का तो पर्दा कर ही नहीं रही है, निकाब नहीं कर रही है, हिजाब जो कुरान में जिसका हुक्म है और जिसकी जो है वो दलाइल हमारे मशायख उलमा कराम ने दी है, वो तो पूरा सर से लेके पैर तक, खुसूसन चेहरा जो कि औरत की जीनत का मकाम है, उसको छुपाने को हिजाब कहते हैं, इसने तो जो है वो सिर्फ सर कवर किया हुआ है। तो ये एक बात आपके जहन में आ सकती है। ठीक है ना, दूसरी बात ये भी आ सकती है कि कितना अच्छा काम कर रही है, कम से कम सतर तो छुपा रही है ना, सतर, क्योंकि बाल जो है सर के वो सतर में दाखिल है, जिसको छुपाना फर्ज होता है वो एक अलग फर्ज है और हिजाब एक अलग फर्ज है, तो ये कम से कम एक फर्ज तो कर रही है ना, दूसरा फर्ज नहीं कर रही। ठीक है ना, तो ये दो ख्याल एक लड़की के बारे में आ सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन उस लड़की का मामला अच्छा है या उस लड़की का मामला बुरा है, ये आप कैसे फैसला करेंगे कि वो जो हेड स्कार्फ हेड कवरिंग कर रही है, क्या वाकई में वो अच्छा काम कर रही है या वो एक बुरा काम रही है काम कर रही है, ये आप कैसे फैसला करेंगे अगर हम आपसे पूछें, बताएं। कराइन की डिस्कशन चल रही है, ठीक है, तो कराइन के हिसाब से आप कैसे फैसला करेंगे, या कैसे आपको पता चलेगा उस लड़की, मिसाल के तौर पर आप अपने बेटे के लिए जो है ना वो रिश्ता रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो अब आपको तो कुछ देखना पड़ेगा ना कि किस बच्ची से आप अपने बेटे का रिश्ता कर रहे हैं, या आप अपनी शादी के लिए जा रहे हैं, हैं? तो उसके लिए तो भाई खामखा में तो वैसे भी हमें वो फिक्र नहीं करनी चाहिए लोगों के बारे में कि लड़की जो है वो अच्छी लड़की है, लड़की बुरी लड़की है, हमें क्या भाई, हम क्यों देखते फिर रहे हैं लड़कियों को। लेकिन जब रिश्ता करने जा रहे हैं, जब उसके साथ कोई मामला करना है, फिर तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हाउ विल यू डिसाइड कि ये अच्छी लड़की है कि ये बुरी लड़की है? जी, उसकी माफी और माशरे के अहवाल से, उसके माजी और मुआशरे के अहवाल से, उसके माजी और मुआशरे के अहवाल से, माशाल्लाह, ठीक है। अब इनके जो जवाब है उसको कोई कोई एक्सप्लेन करे अगर, इन्होंने जवाब तो सही लिख दिया है वैसे, लेकिन कोई इसको एक्सप्लेन अगर करे, उसकी जाती सोच, रहन सहन से, जाती सोच तो आपका, आप कैसे ऑपरेशन करके उसकी जाती सोच निकालेंगे, नहीं, जाती सोच वो आप कुछ नहीं पता चलेगा, कोई और बताएं जवाब। जिन लोग से उसका ताल्लुक, जिन लोग से उसका ताल्लुक हो, हाँ ये भी एक तरीका है, इससे भी आपको कुछ पता चल जाएगा उसके बारे में, ठीक है। देखिए बड़ा सादा सा जवाब है, ठीक है ना, इतना तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अकीदा क्या है, अब आपको क्या पता यार अकीदा क्या है, इतना नहीं, इतना चीज में अकीदे को नहीं घुस कर सकता। अगर मुआशरे में बाकी औरतें हिजाब पहनती हैं तो वो अच्छा नहीं करती, हिजाब करती हैं यानी बाकी औरतें वाकई हिजाब करती हैं तो फिर ये लड़की अच्छा नहीं करती, और अगर बाकी स्कार्फ भी नहीं पहनती तो वो अच्छा कर रही है, माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह, मुकम्मल जवाब ये, ठीक है ना, वो मुआशरे के लिए हिजाब कर रही है, अल्लाह के हुक्म के लिए नहीं। नहीं, ये अपनी तरफ से हम डिसीजन नहीं ले सकते ना, हमें भाई देखें उसके रुख से पता चलेगा, उसकी डायरेक्शन से पता चलेगा, ठीक है ना, खुसूसन जो लोग यहाँ रहते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, राइट, उन लोगों के लिए बात बड़ी अहम है, ठीक है ना, कि ओवरऑल औरतें जो है ना वो निकाब करती थी, वो मुकम्मल हिजाब करती थी, घर में रहती थी, बाहर आती थी तो मुकम्मल पर्दे में आती थी, बुरके के साथ आती थी, ठीक है ना। अब जो है ना, जो ये चेहरे का पर्दा खत्म हो रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या है, ये फुल हिजाब से ये सतर पोशी की तरफ डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन जो है ना वो डायरेक्शन अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रही है, ये कराइन से पता चलेगा ना आपको कि भाई किस मुआशरे में रह रही है, उसका माजी क्या है, उसके घर के माहौल क्या है। घर की दूसरी औरतें जो है वो निकाब करती हैं, ये खाली हिजाब कर रही है, इसका मतलब क्या है, शी इज गोइंग इन दी रॉन्ग डायरेक्शन, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ की तरफ ये जा रही है, ठीक है ना। जबकि इसके बरक्स अमेरिका के अंदर कोई पाकिस्तानी लड़की थी या इंडियन लड़की थी या जो जो भी थी, वो पहले जो है वो पूरी खुली रहती थी, राइट, बाल भी खुले हुए हैं, कपड़े भी जो है वो अजीब गरीब किस्म के पहने हुए हैं, उसने जो है वो सर ढकना शुरू किया है, सर वो भी ढक रही है, सर ये भी ढक रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, कराइन से पता चलेगी, राइट, एक्सटर्नल चीजों को देख करके पता चलेगी वो किस माहौल मुआशरे में रहती है, और उसके घराने में पहले क्या माहौल था, बिल्कुल पर्दे का माहौल नहीं था, बिल्कुल सतर्कपोशी का भी माहौल नहीं था, तो इसकी डायरेक्शन सही है। अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको तौफीक अता फरमाए, हम भी दुआ करेंगे उसके लिए और हम भी जो है वो उसको मदद भी करेंगे कि वो शायद अब पूरे निकाब की तरफ भी आ जाए, पूरे पर्दे की तरफ भी आ जाए, जैसे कि शरीयत के अंदर होता है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट कराइन का, एक इंसान के बारे में आप कराइन के बगैर पता नहीं कर सकते कि क्या हकीकत है, ठीक है ना, एक एक बंदे के बारे में आप कराइन के बगैर उसकी हकीकत मालूम नहीं कर सकते, कराइन जाने बगैर, कराइन को देखे बगैर, राइट, गौर से समझे बगैर, तो आप दुनिया की हकीकत कराइन के बगैर जो है वो कर सकते हैं, राइट, कराइन के बगैर जो है वो आप दुनिया के मामलात, दुनिया के जो 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 हैपनिंग्स हो रही हैं, जो दुनिया के अंदर मामलात हो रहे हैं, आप कराइन के बगैर उनको समझ लेंगे, आओ देख, यानी ना इधर देखा ना उधर देखा, बस किसी चीज के जो है ना वो जात को देख लिया, किसी खबर की जात को देख लिया कि खबर जो है ना बड़ी अच्छी खबर आ गई है ना भाई, काफिरों को शिकस्त देने वाली खबर आ गई है, अल्लाह के बंदे कराइन भी तो देखो ना, कराइन नहीं देख रहे कहाँ से खबर आई है, किस मीडियम से आपके पास खबर आ रही है, एलॉन मस्क साहब वो आपको खबर पहुंचा रहे हैं या जो है वो क्या नाम है उसका, मार्क जुकरबर्ग साहब के वास्ते से वो आपको खबर मिल रही है, ये कराइन है। खबर तो बड़ी अच्छी है, बिजात ही खबर तो बड़ी अच्छी है, लेकिन कराइन भी तो देखो ना यार, कराइन भी तो देखो ना यार, राइट? अब हम कराइन को नहीं देखना चाहते, हम खबर को देखना चाहते हैं और तालियां बजाना चाहते हैं, फिर उसके ऊपर बड़ा अश अश करना शुरू हो जाते हैं और खुश होना शुरू हो जाते हैं जिनको हम अच्छा समझते हैं, और जिन खबरों को हम बुरा समझते हैं हम सिर्फ खबर को देखते हैं और खुश हो जाते हैं, और नहीं वो हम डरना शुरू हो जाते हैं, कराइन को नहीं देखते, ठीक है ना? एक बहुत बड़ा करीना जो कि हमारे मशायख हमें, बल्कि वो मशायख जो समझा रहे थे ना, वो तो अब दुनिया से चले गए या बस जाने ही वाले हैं, अब आजकल तो समझाने वाले भी नहीं है, ठीक है ना? कि ये जमाना जिसके अंदर हम रह रहे हैं, ये जमाना फितने दज्जाल का जमाना है, ये धोखे का जमाना है, ये ईमान के फितने का जमाना है, ये कराइन है। अब कॉमन सेंस है, ये हमारी अकल के ऊपर एक चैलेंज है कि हम अगर किसी खबर को सुनते हैं तो हम ये बात मत भूलें कि वो खबर हम किस दौर के अंदर सुन रहे हैं, किस जमाने के अंदर हम सुन रहे हैं, किस किन फितनों के साथ हम उस खबर को सुन रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो बेजाती ही कहते हैं इन ऑफ इट सेल्फ, जो वो खबर है उस खबर के ऊपर हम तालियां बजाना शुरू हो जाएं, या जो है वो कोई बुरी खबर आए तो उसके ऊपर हम जो है वो यानी मातम करना शुरू हो जाएं, और ये मत देखें कि कराइन क्या है, राइट? जो पिछले पिछले क्लास के अंदर बात हो रही थी, राइट? पिछले क्लास में तो ये बात हो रही थी ना, सही? तो कराइन को देख करके आप फैसला करें ना, आप आओ देखा ना ताओ जो है वो फैसला कर लेते हैं किसी भी खबर के ऊपर, ना मीडिया देखा कि किस मीडिया के थ्रू ये खबर आ रही है, ना बंदे की जुबान देखी कि कौन बंदा जो है वो आपको आकर के खबर दे रहा है। कुरान अजीम शान हमारे ऊपर हुज्जत तमाम कर गया, राइट? कर गया तो नहीं, बल्कि अभी तक हमारे दरमियान मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यन, अगर जो खबर तुम्हारे पास आ रही है उसका करीना यह है कि वो पहुंचाने वाला एक फासिक है, उसका सोर्स फिस्को फुजूर वाला सोर्स है, तो तुम ऐसे अंधे एतमाद मत कर लो उस खबर के ऊपर, बल्कि तहकीक करो, पूरा रिजेक्ट भी ना कर दो लेकिन तहकीक के बगैर उसको एक्सेप्ट भी ना करो। क्या हम ये काम करते हैं? अपने गिरेबान में झांक करके देखें, और इतना झांकें कि ऐसा ना हो कि गिरेबान के अंदर ही जो है वो घुस जाए पूरे के पूरे। अक्सर ये भी मसला होता है हमारे साथ, पूरे के पूरे गिरेबान के अंदर अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा, राइट? ये नहीं है मतलब गिरेबान में झांक के देखने का। उर्दू के मुहावरा बनाने वालों ने भी बड़ा सब देख दाख करके मुहावरा बनाया, भाई झांकने का मतलब है झांकना, झांको अंदर, राइट? घुस मत जाओ उसके अंदर के बस जो है ना वो बस यही जो है वो सर खाते रहो किसी सिवा, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। हजरत ने ऐसा टाइट के डांटा था ना, जब उलमा ने हजरत के सामने इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी ना, हम तो ऐसे हैं, हम तो कुछ नहीं है, हम तो ये हैं, तो ऐसा डांटा था उनको कि बस करो ये वाली, बस करो ये, हम तो ये नहीं, हम तो वो नहीं, हम तो वो नहीं, काम करो यार, काम करो खुदा के बंदो, काम करो, ये राग मत अड़ापते रहो कि हम तो ये, हम तो वो, हम तो ये, हम तो वो, हम तो, यानी ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि आप गिरेबान से बाहर अंदर ही घुस गए और फंस गए बस अंदर जाकर के, आप बाहर निकलने का आपको कोई मूड नहीं हो रहा, ठीक है? खैर ये दूसरी तरफ टेंजेंट में हम निकल जाते हैं, लेकिन बात समझ में आ रही है, ठीक है? बात क्लियर हुई कराइन की कितनी अहमियत है। एक दफा तो हमें गुस्सा आ गया था तो हमने सबसे हाथ खड़े करवा लिए थे और बाकियों को बड़ी सुनाई थी, लेकिन अब दोबारा नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? लेकिन दिल तो यही चाह रहा है कि सबसे हाथ खड़ा करवाएं, लेकिन इंशाल्लाह आज नहीं करूंगा, ठीक है? उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया, अगर ना समझ में आए तो फिर पूछ लिया करें, ठीक है? तो फरमाया कि तो इसी मायूसी की हालत में, यानी अल्लाह से मायूसी नहीं, अपने आप से मायूसी, अपने फैसलों से, अपनी अकल से मायूसी है, जिससे कि हम मायूस होने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम अल्लाह ताला से फिर दुआ मांगने की तौफीक मिले कि अल्लाह मुझे अकल सलीम अता फरमा, क्योंकि हम मायूसी नहीं है कि हमारे पास अकल सलीम नहीं है, हम तो इसी मखमसे में है कि हमारे पास तो सबसे ज्यादा अंकल सलीम वाली अकल है, राइट? सबसे ज्यादा अकल सलीम तो मेरे पास है, मैं क्यों मांगूंगा अल्लाह ताला से, राइट? तो पहले तो मानना पड़ेगा ना, यानी पहले अंबिया की सुन्नत पे अमल करते हुए हम अपनी अकल से मायूस हों, अपने जजमेंट से मायूस हों, फिर कहीं जाकर के अल्लाह ताला से दिल से दुआ निकलेगी, अल्लाह मुझे अकल सलीम अता फरमा। ठीक है, तो पैगंबर जो है ना फिर इसी मायूसी की हालत में, सही है, अपनी जजमेंट की मायूसी थी ना, तो मायूसी की हालत में उनको हमारी मदद पहुंची। ठीक है ना, अब ये जो मदद पहुंचनी होती है ना, तो अल्लाह की मदद ईमान वालों को जो पहुंचती है, तो उसके फिर कुछ तौर तरीके होते हैं, उसके फिर कुछ जो है ना वो फेसेट्स होते हैं, उसके कुछ अंदाज होते हैं। तो मदद कैसे कैसे पहुंचती है, क्या क्या शक्लें हो सकती हैं अल्लाह की मदद आने की। ठीक है, तो एक मदद जिसका कि इस कॉन्टेक्स के अंदर ज्यादा जिक्र है कि काफिरों के ऊपर अल्लाह का अजाब आना। ठीक है, यानी जिन्होंने ईमान वालों का इनकार किया, नबी सबसे बड़े ईमान वाले खुद नबी होते हैं और फिर उनके बाद उनके फॉलोअर्स ये सब ईमान वाले होते हैं, तो जिन्होंने उनका इनकार किया वो काफिर होते हैं, तो उनके ऊपर अल्लाह की इज्तिमाई पकड़ आ जाए, इज्तिमाई हालत में उनको तबाह बर्बाद किया जाए। ठीक है ना, ये ईमान वालों के लिए अल्लाह की मदद होती है। ठीक है, और दूसरी शक्ल क्या होती है अल्लाह की मदद की, अगर आप बता दें, इज्तिमाई बर्बादी काफिरों की। ठीक है, ये ईमान वालों के लिए अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद ईमान वालों के लिए, इसकी और कोई शक्ल वो क्या होती है जी? मुसलमानों की इज्तिमाई कामयाबी है, मुसलमानों की इज्तिमाई कामयाबी, तो वो थोड़ा थोड़ा सा और खोले ना इसको, क्या मतलब मुसलमानों की इज्तिमाई कामयाबी? अच्छा, जो पहली वाली मदद की शक्ल थी, तो वो अल्लाह ताला कैसे भेजते हैं, कैसे भेजते हैं उसके लिए, उसके लिए मीडियम क्या होता है? नहीं, कैसे भेजते हैं वो, अदाब की तो बात मैंने कर दी ना, मैं आप सबको थोड़ी पूछूंगा जो मैंने कर दी ऑलरेडी बात। ठीक है, तो अल्लाह ताला यानी उसके लिए चैनल अल्लाह ताला क्या यूज करते हैं, या उसके लिए मीडियम क्या यूज करते हैं, उसके लिए जो है वो मैकेनिज्म क्या यूज करते हैं, राइट? एग्जैक्टली। बाकी लोग क्या सो रहे हैं सारे? माशाल्लाह बच्चे ने आज ज्वाइन किया है, तो वो जवाब अच्छे से, अल्लाह ताला अमल की भी तौफीक अता फरमा। ठीक है, जवाब लेकिन माशाल्लाह सही दे रहे हैं, ये उम्र इनकी बहुत कम है। ठीक है, फरिश्ते, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से ये मदद भेजते हैं, क्योंकि जो इज्तिमाई अजाब आता है ना, वो अजाब फरिश्ते उनके ऊपर लेकर के आते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आते हैं, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कभी इसराफील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम भी साथ साथ होते हैं, है ना, ये ड्यो डुओ आता है ये जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम का, कभी अकेले जिब्राइल अलैहिस्सलाम, कभी जो है वो पूरी की पूरी फौज भेज देते हैं फरिश्तों की, जैसे बदर में अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फौज भेजी थी, और इससे पहले कि कोई ईमान वाला जो है वो काफिर को मारता, फरिश्ते पहले उसको खड़का देते थे। ठीक है ना, 1,000 फरिश्ते या 3,000 फरिश्ते, या ठीक है ना, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं, अब भी गर्दों से कितार अंदर कितार, गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। ठीक है ना, तो वो फरिश्तों की शक्ल में अल्लाह ताला मदद भेजते हैं। ठीक है ना, तो दूसरी वाली मदद किस शक्ल में आती है भाई? मुसलमानों का गलबा और रोब। ठीक है, मुसलमानों का गलबा होता है, मुसलमानों का गलबा कैसे होता है, एक तो वो फरिश्तों के जरिए से हो गया ना, दूसरा तरीका ये होता है कि अल्लाह ताला काफिरों में से कुछ जो सलाहियतों वाले होते हैं, ताकत वाले होते हैं, अकल वाले होते हैं, वसाइल वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनको ईमान की तौफीक अदा फरमा देते हैं, उनको मुसलमान बना देते हैं, वो आकर के मुसलमानों के साथ मिल जाते हैं, अब जो है ना ये मुसलमानों को दुनियावी ताकत नसीब हो जाती है, दुनियावी रिसोर्सेज नसीब हो जाते हैं, राइट? और अब जो है ना काफिरों को फिर जो पिटाई की जाती है, वो फिर फरिश्ते आके पिटाई डायरेक्टली नहीं कर रहे होते, एक्सेप्शंस तो फिर भी चल रही होते हैं फरिश्तों वाली, जैसे हुनैन के अंदर फिर भी फरिश्ते आ गए। ठीक है, लेकिन हाथ जो है वो मुसलमानों का इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि अब मुसलमानों के पास जो है ना वो ताकत आ गई, उनके पास वसाइल आ गए, ठीक है, जैसे कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत अमर इबन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, वैसे हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो तो ओहद के अंदर शहीद हो गए थे, लेकिन वो वाला थोड़ा सा डिफरेंट मामला है, ठीक है ना। लेकिन खालिद और अमर इबन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह इस तरह के और भी पांच पा मिल गए काबे को सनम खाने से, तो ये कोई खाली तातारियों के जमाने में कोई थोड़ी हुआ था, ये तो मक्का मुकरमा में भी यही हुआ था, सनम खाने के अंदर ही तो सारे के सारे थे ना। हमजा रजी अल्लाह तआला कहाँ से मिले थे? सनम खाने से मिले थे। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला कहाँ से मिले थे? सनम खाने से मिले थे, राइट। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला कहाँ से मिले थे? सनम खाने से मिले थे। जो बगैर सनम खाने के मिले थे वो तो खाली एक आदि थे ना, जो कि पहले भी जो है वो तौहीद के ऊपर कायम थे, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला पहले भी मुवाहिद ही थे, खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला के बारे में भी यही गुमान करते हैं, वो पहले भी मुवाहिद ही थी, लेकिन बाकी तो सनम खाने वाले लोग थे, ठीक है ना। उसी तरह बाद में भी ये सिलसिला चलता रहा। तो अल्लाह ताला दूसरी तरीके की मदद जो होती है ना वो होती है कि जो लोग आपकी मुखालफत कर रहे थे उनके दिनों को माइल फरमा, और वो आके मुसलमानों से मिल जाते हैं। अब अगर हम भी नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के तरीके के ऊपर चलते रहेंगे ना, ठीक है ना, हमारा काम है चलते रहना, ठीक है ना, अल्लाह ताला हिदायत देंगे सनम खानों वालों को, शराब खानों वालों को, मौसीकी खानों वालों को, सिनेमा हॉल वालों को, अल्लाह ताला हिदायत देंगे यार। इन्नका ला तहदी मन अहबबता, बेशक तुम हिदायत नहीं दे सकते। और अल्लाह ताला ने किसी एक जगह खाली ये नहीं फरमाया अपने कुरान मजीद के अंदर कि यहदी मैं यशाओ, बल्कि कई जगहों पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहदी मैं यशा वल्लाहु यहदी मैं यशा, कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है, ठीक है। तो हिदायत का मामला अल्लाह ताला ने बड़ा मखसूस तरीके से और बड़ा बड़े एविडेंट तरीके से अपने हाथ में रखा हुआ है, कि यानी उसके अंदर जो है ना वो हम धोखे में मुबतला नहीं हो सकते कि नहीं मेरी मेरी तबलीग की वजह से लोगों को हिदायत मिल गई, मेरे दर्स कुरान की वजह से लोगों को हिदायत मिल गई। अल्लाह ताला बार बार रिपीट करते हैं इस बात को कुरान मजीद के अंदर कि नहीं ये जो है ना ये मामला तुम डोंट ट्राई टू कन्फ्यूज योर सेल्फ, ठीक है ना, डोंट गेट कन्फ्यूज कि जो है ना तुम्हारी वजह से किसी को हिदायत मिली, हिदायत तो मेरी वजह से मिली, ठीक है ना, और मैं देता हूँ हिदायत, मैं ही हिदायत देता हूँ, कोई भी हिदायत नहीं दे सकता, ठीक है। तो एक तो कराइन की बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और दूसरी ये अल्लाह की मदद की सूरतें क्या होती है ना, जब ये सूरतें हैं अल्लाह की मदद की फरिश्तों के जरिए से या किसी के दिल को जो है वो तब्दील कर देना, तो अब हमारा काम तो बड़ा आसान हो गया ना, ठीक है ना। अल्लाह के फरिश्ते हैं काफिरों को बर्बाद करने के लिए, और जो है वो अल्लाह ताला हैं इन लोगों के दिलों को बदल देने के लिए, अब हमें क्या जरूरत है कि जो है हम जो है ना वो यानी दीन को बदलते रहें, राइट। यानी काफिरों के साथ नरमी रखना ये तो अलग चीज है ना, ये तो सुन्नतों से साबित है, ये तो हमारे पूरे की पूरी हिस्ट्री के अंदर ये बात है कि भाई काफिरों को तालीफ कुलूब के लिए जो है ना वो आप उनको कंसेशन देते हैं, लेकिन इसकी तो कहीं नजीर नहीं मिलती कि आप काफिरों को जो है वो इस्लाम में दाखिल करने के लिए इस्लाम को चेंज करना शुरू कर दें, उन्हीं बातों के जो है वो आप खिलाफ जाना शुरू कर दें जिन बातों को आप अपने यानी हलकों के अंदर जो है वो घोल करके पी जाते हैं और घोल करके दूसरों को पिला देते हैं, तो वही चीजें जो है वो आप जो है वो चेंज करना शुरू कर दें कि हाँ भाई वो भी आ जाए और ये भी आ जाए वो भी आ जाए, सब गुत्थम गुत्था होकर के है ना बिलाखिर जो है वो गले मिलना शुरू कर दें। हमारे एक दोस्त ने गालिबन क्लास में मौजूद है कि नहीं, एक बड़ी जबरदस्त टर्म इस्तेमाल करी है ना, बड़ी है कि प्लूरलिज्म चल रहा है भाई, प्लूरलिज्म हर लेवल के ऊपर आजकल प्लूरलिज्म चल रहा है, सब ठीक है भाई, सब सब रास्ते जो है ना वो अल्लाह को बनाने वाले रास्ते, ठीक है। तो अब जो है वो अदियान में भी प्लूरलिज्म चल रहा है, हाँ भाई सब ठीक है, सब मिलजुल करके दुनिया की मुसीबतों का हल निकालेंगे, मजलूमों को जो है वो मदद प्रोवाइड करेंगे सब मिलजुल करके, है ना, हाथों में बाहों में बाहें डाल करके और हाथों में हाथ डाल करके, है ना। तो अधियान के लेवल के ऊपर भी प्लूरिज्म चल रहा है, ठीक है, और जो है वो दीन के अंदर भी जो है ना जो इंतहाई बदअकीदा भी हैं और जो कि इंतहाई जो है वो उनकी गलत नस्बतें भी हैं, राइट, उनके साथ भी प्लूरिज्म चल रहा है। हाँ भाई इतनी भी सख्ती नहीं होनी चाहिए, इतनी भी सख्त, तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे जितने अकाबरीन थे वो तो बड़े सख्त थे, वो तो पता नहीं क्या थे, वो तो जो है वो दीन को जो है ना वो उसकी हिफाजत करते करते उन्होंने अपनी जिंदगियां खत्म कर दी, और आपको जो है ना आज दीन फैलाने का इतना शौक हो गया है, इतना जो है वो आपको फिक्र हो गई है दीन को फैलाने की और लोगों के दीन में दाखिल करने की, जो कि आपके बड़ों को नहीं थी ये वाली फिक्र, ठीक है ना, आपने जो है ना वो हर चीज को एकोमोडेट करना शुरू कर दी। ठीक है ना, अंदाजा नहीं है हमें कि हम किस रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं, ठीक है ना, लगता है हमें अंदाजा नहीं है, अल्लाह करे कि हमें अंदाजा ना हो कि हम किस रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं, क्योंकि अगर अंदाजा होने के बावजूद हम उस रास्ते पे चल रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपको पता है पिछली क्लास में हम ये बात कर चुके हैं, ठीक है। तो फरमाते हैं कि वो ये यानी इसी मायूसी की हालत में उनको हमारी मदद पहुंची, वो ये कि वादे के मुताबिक कुफार पर अजाब आया, फिर इस अजाब से हमने जिसको चाहा उसको बचा लिया गया। मुराद इससे ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के मानने वाले मोमिनीन को बचा लिया गया और कुफार हलाक हो गए, क्योंकि हमारा अजाब मुजरिम लोगों से नहीं हटता बल्कि जरूर आकर के रहता है, इसलिए कुफारे मक्का को चाहिए कि अजाब में देर होने से धोखे में ना रहें, ठीक है, ना कुफार जो है वो धोखे में रहें, ना हमारे जैसे जो ढिलमिल किस्म के दरमियान वाले हैं ना, जिनके अमली तौर पर जो उसको मुनाफिक कहते हैं, ठीक है ना, हम इस धोखे में रहें या इस मायूसी का शिकार हो जाएं, या इसकी वजह से जो है वो अपनी मेहनत का रुख तब्दील कर दें, या मेहनत का जो है वो तरीका तब्दील कर दें, या हराम को जो है वो हलाल कहना शुरू कर दें और हलाल को है वो हराम कहना शुरू कर दें, है? कि भाई अल्लाह की मदद तो आ नहीं रही, कुफार के ऊपर तो अदाब आ नहीं रहा, चलो इफ यू कैंट बीट देम लेट्स ज्वाइन देम, इफ यू कैंट बीट देम लेट्स ज्वाइन देम, ठीक है। तो इस जमाने में जो हमारा इस वक्त बहुत बड़ा जो मसला बन गया है ना, बनता चला जा रहा है, और अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर, हमारी औलादों के ऊपर रहम करे कि उनको दीन की कौन सी वाली शक्ल छोड़ करके हम इस दुनिया से जाएंगे, ठीक है, हमने तो इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया है कि इफ यू कैंट बीट देम लेट्स ज्वाइन देम। उम्मीद करते हैं कि आपने इस जुमले को अपने दिल के कर्तास के ऊपर लिख लिया होगा कि ये जुमला जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है, अल्लाह का दीन है और बंदे भी अल्लाह के हैं, ये दुनिया भी अल्लाह की, ना मेरे बंदे हैं ना आपके बंदे हैं, राइट, ना ये दीन मेरा दीन है ना आपका दीन है, और ये ना दुनिया मेरी है और ना आपकी है, ये सब अल्लाह का है, और अल्लाह ताला नोज व्हाट टू डू विद इट एंड व्हेन टू डू इट, लेट अल्लाह डू हिज जॉब, लेट अल्लाह डू हिज जॉब, वी डू वॉट इज आवर जॉब, हम वो करें जो हमारी जिम्मेदारी है, यानी दीन की हिफाजत, राइट, दीन की हिफाजत की मेहनत कर सकें या ना कर सकें ये अल्लाह जानता है, लेकिन हम कोशिश करें, हम मेहनत करें, अपने 5 फुट 6 फुट के बदन के ऊपर भी दीन की हिफाजत की मेहनत करें, अपने घराने के अंदर भी दीन की हिफाजत की मेहनत करें, राइट, और जहां अपने घराने के बाहर भी हमारे लिए मुमकिन हो वहां पर हम दीन की हिफाजत की मेहनत करें, दीन की हिफाजत की मेहनत करें, भीड़ जमा करने की मेहनत ना करें, भीड़ जमा करने की, भीड़ समझते हैं ना, भेड़ नहीं, भीड़, क्राउड, क्राउड जमा करने की मेहनत ना करें, दीन की हिफाजत की मेहनत करें, हिदायत अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, हिदायत अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ने ही अपना जिम्मा लिया हुआ है हिदायत देने का, और अल्लाह ने हमें बार बार अपने कलाम में याद दिला दिया है तुम हिदायत नहीं दे सकते हो, ये तो मैं ही देता हूं जिसको मैं चाहता हूं, इसको टेक ओवर करने की कोशिश ना करें, अल्लाह ताला से उसके इस काम को टेक ओवर करने की कोशिश ना करें, अल्लाह ताला से दुआ कल अपना बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए, व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।